ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தீர்த்த தீர்த்த கா தீர்த்த மத்தலோ வித்யா கிஸ்கோ தேனா, ஜிஸ்கே பாஸ் இஸ்மே குச் ஹே உஸ்கோ வித்யா பிரதான கர்னா. अर्थात विद्या प्रदान करने के लिए चिन्ह लक्षण है, इस चिन्ह देखने से उसके द्वारा उसको विद्या देना है. इस शास्त्र में विद्या का द्वार तीर्थ इसे कहा गया. भाष्य में श्लोक है, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्यां प्राह तानि तीर्थानि शरण मम. विद्या स्वयं कहती छे मेरा तीर्थ है, अर्थात विद्या प्रदान करने के लिए योग्यता रूप ब्रह्मचारी कोई है. अभी गुरुकुल में वास करता है, वेद अध्ययन करना व्रत है, सेवा पूर्वक ब्रह्मचारी ये एक है. दूसरा धनदायी, धन दातुशील जिसका स्वभाव धन बहुत दान देता है, और मेधावी मेधा शक्ति अधिक है. श्रोत्रिय शास्त्र अध्ययन बहुत किया है, ऋषि महर्षि जाते हैं बाद में आएगा, श्रोत्रिय है उसको उनको विद्या देना. और प्रिय जो हो, पुत्र हो शिष्य हो, विद्या व विद्या प्राह, और एक विद्या से भी विद्या, उनसे कुछ विद्या ग्रहण करते हो उनको एक विद्या दो. ऐसे ये भी है, कितने छह देखो हिसाब करो, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी क्षत्रिय प्रिय और विद्या से विद्या, ये छह हुआ. अन्यत्र कहा गया है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धने नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम. गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से विद्या की प्राप्ति होती, गुरु शुश्रूषया विद्या, इसलिए तीन रखा है. अन्य कुछ होने पर भी गुरु शुश्रूषा तो अवश्य है, इसलिए इसको भी कहा था. धन शूद्र जैसे तुम खाली धन देकर विद्या ग्रहण करना चाहते हो निंदा करने के लिए, अर्थात जो खाली धन देकर के सेवा नहीं करता, खाली धन देकर विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या शूद्र जैसे. ये तीन में रखा है गुरु शुश्रूषया, एक सबसे बड़ा साधन गुरु शुश्रूषा सेवा, गुरु शुश्रूषया विद्या. और धन जो है पुष्कलेन धने नवा, धन देकर विद्या प्राप्त करना है तो पुष्कलेन बहुत पर्याप्त धन से, थोड़े धन देने से धन नहीं, पुष्कलेन वा धने नवा बहुत धन से, द्वितीय हो गया. और तृतीय हो गया विद्या विद्या अथवा विद्या विद्या, विद्या से विद्या. अब अपने देखे हैं काशी में ऐसे विद्वान अभी कोई कोई होते हैं, अभी महात्मा भी है, कोई व्याकरण में अच्छा पढ़ा है, न्याय नहीं पढ़ा, तो उनके पास न्याय पढ़ते हैं. जिनसे न्याय पढ़ते हैं वो उनसे व्याकरण पढ़ते हैं, उसका हम व्याकरण पढ़ाते हैं, उनसे न्याय पढ़ते हैं. तो ये पर व्याकरण के शिष्य न्याय के गुरु, वो न्याय पढ़ाते हैं, और जो व्याकरण के आचार्य वो छात्र बन जाते हैं न्याय पढ़ते समय. तो एक विद्या ग्रहण करके विद्या दूसरे विद्या देते हैं. तो विद्या से विद्या देने के तो जिनके पास विद्या है वैसे हो सकता है, और दो ही रहा, गुरु शुश्रूषा विद्या अथवा पुष्कलेन धनेन. पुष्कलेन धन जैसे आया था राजा बाला के संवाद में, खाली ब्रह्मते ब्रवाणित सुन करके कहा सहस्र गो सहस्र, 1000 गो का हिसाब करो कीमत मालूम कितना होता है मालूम है, 1000 गो का कीमत कितने होगा, 1000 को 100 रूपया तो 1 लाख होता है ना, 100 रूपया तो 1 लाख वस्तु, तो 100 रूपया नहीं हिसाब करने के बताते, 1000 रूपया तो कितना होगा, 1050000, चलो हिसाब सीधा हो जा, हिसाब करने बैठे 50000 का 1000 गुणा करना 5 करोड़ रूपया, हिसाब सीधा हो तो 5 करोड़ तो कितने लोगों के पास, सब लोगों के पास होगा नहीं देने के लिए, जिनके पास है वो कितने, मतलब इतने गो सहसम. और इसमें आगे आएगा बृहदारण्य उपनिषद में, इतने चांदोग्य में नहीं, ये आज्ञामर के जनक का संवाद आएगा, जनक कितने बार एक एक पर्याय में एक एक सौ एक सौ गो कितने बार देते हैं, बहुत देने के बाद वो स्वीकार नहीं करते, फिर उपदेश करते हैं, अंत में तो पूरा राज्य दे दिया. तो पुष्कल है ना धन है ना भाई, यहां पुष्कल धन है, इसलिए कहा इतने देते बात होते 1000 गो दे दिया, 1000 5 करोड़ हो गया. एक दो गोदान, 3-4-10 गोदान करने में तो कितना अधिक होता है, और 1000 गोदान हिसाब करते ही डर लग जाएगा, 5 करोड़ नाम सुनते ही. तो पुष्कलेन धन्यवाद गुरु शुश्रूषया, तो यहाँ 6 कह दिया, छह में से जैसे कोई ब्रह्मचारी, किंतु इसलिए कहा जो ब्रह्मचारी है वो भी तो सेवा करता है, सेवा श्रोत्रिय हो, प्रिय हो, मेधावी हो, जितने भी हो, सेवा के बिना नहीं। इसे गुरु शुश्रूषा में बहुत कुछ अंतर्भूत हो जाता है। तो इन्होंने कहा तुमने यही दिया जो धन लाया और वो पत्नी के लिए लाया कन्या को, इसमें विद्या अश्रद्धालु भी है, प्रिय अभी धनदायी है, धन देने वाला, इसको दे करके कहा वाच आहार इमास लाया अपने, अच्छा किया, मतलब ठीक उचित थी। ये विद्या के मुख द्वार को देखते हुए कहा, द्वार विद्यादान की तीर्थ देखा, अभी योग्यता है, जाए पत्नी के लिए लाया अपने कन्या, कन्यादान भी एक होता है, धनदान जैसे होता है कन्यादान, कन्या को ये योग्य सत्पात्र में देना दान हो भी, उसको देकर कहा इमाह लाया। शूद्र फिर संबोधन करता है, यहां भी शूद्र जो कहता है तो अभी जब ये लाया प्रसन्न हो गए, अनैन मुख्य न आलाप, इसी के द्वारा तुम विद्या ग्रहण करना चाहते हो, अच्छा है, खुश हुए। यदि ते है थे जहां इसे था रेकोपन्न नाम गांव है महावृष जहां वो था तस्में हो वाच, उसको फिर उपदेश किया। तो यहां प्रसन्न होने करके आगे उपदेश करेंगे, उपदेश किया उस समय भी शूद्र शब्द से कहा, तो यहां इसके ऊपर विचार हुआ तो आगे जो तो पहले तो शूद्र कहा था आगे क्यों कहते, तो शोक से आया था शूद्र ये कहने के लिए आगे भी शूद्र कहने से कोई आपत्ति नहीं, और जो नाराज होकर कहा था वो शूद्र शब्द यहां कहने का नहीं है, किन्तु जो पहले शूद्र कहा था उसकी अनुवृत्ति है, शूद्र शब्द से कह दिया, शोक से आया था शूद्र कहकर के अच्छा करके कहकर इसको उपदेश किया। ये जो उपदेश करता है एक को आगे उपदेश करेगा, इसका नाम है संवर्ग विद्या, संवर्ग का उपदेश, संवर्ग रूप यहां उपासना है, किंतु ये उपासना अहंग्र उपासना, मैं ही संवर्ग इस उपासना, तो अहंग्र में ही समष्टि प्राण इस उपासना, अन्य उपासना की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उससे हिरण्य गर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो जितने कर्म उपासना है सबसे श्रेष्ठ फल है ये हिरण्य गर्भ प्राप्ति, अन्य जितने पुण्य कर्म उपासना सब उसमें अंतर्भूत हो जाता है, इसे उत्कृष्ट है, किंतु जो ब्रह्म ज्ञान सद्य मुक्ति का साधन वो ज्ञान नहीं है, तो यह संवर्ग विद्या है। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेव अप्येति, यदा सूर्य अस्तमेति वायुमेव अप्येति, यदा चंद्रो अस्तमेति वायुमेव अप्येति। वायुर्वाव संवर्ग, ये वायु ही संवर्ग है, संवर्ग संवर्जना सबका ग्रहण कर लेता है, सबको ग्रास कर लेता है, इसे संवर्ग, वायु सबको ग्रास करता है, सम्यक ग्रहण कर लेता है, समेट लेता है और सब छोड़ देता है, बनाता है, उत्पत्ति कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, समेट लेता है, सबको ग्रास कर लेता है, इसे संवर्ग हुआ। वायु संवर्ग कैसे हुआ, यदा भी अग्नि रुद्वायति, अग्नि जब शांत हो जाती है वायु में अप्येदी, वायु में लीन हो जाती, अग्नि जलते समय अग्नि शांत हो गई तो अग्नि कहाँ गई, तो वायु में लीन हो गई। यदा सूर्य अस्तमेति, जब सूर्य अस्त हो जाते हैं कहाँ जाएंगे, वायु में अप्येदी, वायु में ही चलेगी, जो जहां कुछ क्रिया है प्राण वायु के द्वारा सूर्य अस्त गए तो वायु उसको ले गया। यदा चंद्र अस्तमेति, वायु में अप्येदी, चंद्र व्यस्त होते तो वायु में लीन होते हैं, तो यहां अग्नि सूर्य चंद्र वायु में लीन होते हैं, वायु इन तीनों को ग्रास कर लेने से वायु का संवर्ग। और आगे कहते हैं यदा आप उच्छुष्यन्ति वायुमेव पीयन्ति वायुर्हेवयितान सर्वान संवृक्त इति अधिदेवतम, जो जल सूख जाता है वायुमेव पीयन्ति, कपड़ा सुखाते तो वायु में ही पानी सूख जाता है, वायु में ही चलेगी पानी, वायु ही एवयितान सर्वान संवृत, ये सबको वायु ही सबको ग्रास कर लेता है, सबको अपने ले लेता है, सबको ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसका नाम है संवर्ग। अग्नि सूर्य चंद्र और जल ये सबको वायु ग्रहण कर लेने से यह हो गया संवर्ग, अधि देवता संबंधी संवर्ग का। अथाध्यात्मम प्राणुवाव संवर्ग स्वेदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन प्राणो ये वेतान सर्वान संवृत्त इति, जिस संवर्ग उपास कहा आदिदेव समष्टि वायु के लिए संवर्ग कहा, अथ अध्यात्मम देह में अभी संवर्ग कहते हैं, देह में संवर्ग को न प्राणो भाव संवर्ग, ये जो देह में शरीर में प्राण वायु है यही संवर्ग है। सदा स्वपिति जो सुषुप्त अवस्था में सो जाता है तथा प्राणमेव वाघ अप्यति, उसमें वाघ इंद्र काम नहीं करती है, प्राण में लीन हो जाती है। प्राणम चक्षु, प्राण चक्षु भी, श्रोत्र भी, मन भी, सब प्राण में लीन हो गए, प्राण चलता रहता है, सब अपने कार्य से उपरत हो गए, उपरत हो गए मतलब सब प्राण में एक हो गए। इसमें वाघ चक्षु श्रोत्र और मन ये चार सौ प्राण में लीन हो गए। सुश्रुति जगता है तो प्राण चलता है, प्राण से फिर आते हैं, तो ये प्राण हो गया और देह के अंदर संवर्ग, दो हो गए, बाहर संवर्ग हो गया वायु, देह के अंदर संवर्ग हो गया प्राण। तो वाय तो दो संवर्ग वायु रेव देवेशु प्राण प्राणेशु, दो संवर्ग हो गए, संवर्जन गुण सबको ग्रहण करना, त्याग करना, ग्रास करना, वायु रेव देवेशु देव में वायु संवर्ग हो गया, और प्राणी सुखा था बाघाद इंद्रिय में, प्राणी सुखा था इंद्रिय में, बाघाद इंद्रिय में प्राण हो गया, मुख्य प्राण हो गया संवर्ग। अथ शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनी परिविश्यमानो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्माउ ह न ददतु। ये संवर्ग उपासना करने वाले के ब्रह्मचारी क्या चिंतन करता है, मैं ही संवर्ग हूं, ये समस्त वायु बाहर वायु है जो सबको सम्यक ग्रसन कर लेता है, अग्नि चंद्र अग्नि सूर्य चंद्र और जल सबको ग्रास करने वाला संवर्ग में हूं, और प्राण रूप से संवर्ग रूप से मैं हूं, जिसमें वाघ चक्षु श्रोत्र मन सौलीन हो जाते हैं वही संवर्ग में हूं, समस्त प्राण हिरण्यगर्भ में हूं। ऐसे चिंतन उपासना करते करते इतने दृढ़ उपासना में दृढ़ हो गया, उपासना ऐसे ही करना है, उपासना करते करते इसे उपासना इतने तन्मय हो जाए, देव भूत्वा देवान अप्येति, देवत्व को प्राप्त करेगा, उपासना करते करते स्वयं देव हो करके देवत्व हो जाता है, देव हो जाता है। तो ऐसे चिंतन करते करते इतने दृढ़ उसका निश्चय हो गया कि वो भिक्षा में जा रहा है तो भी सोचता है मैं ही संवर्ग हूं, मैं ही संवर्ग हूं, ऐसे अपने से रटता नहीं, तो उसका अभिमान हो गया मैं ही संवर्ग हूं समष्टि वायु, ऐसे करे भिक्षा में जाता है किन्तु वो इसको भूलता नहीं। कुछ कार्य करते भगवान का ध्यान करते तो मन इधर उधर भागता है, और कुछ कार्य में लगे जपाती छोड़ कर उसको भूल जाती, कार्य में लगे तो बस भाग गई, किंतु ये होना चाहिए कार्य में जाते समय भी उसको नहीं भूलना चाहिए, ना लक्ष्य को भूलना है, उसके प्राप्ति के साधन भगवान का नाम लेते भगवान करते तो उसमें कुछ अध्ययन श्रवण किया उसमें मन उसमें रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर भूल जाते हैं। ये भिक्षा में जाता है तो इसे अभ्यास करने वाले चलते फिरते भी चिंता न चले, ध्यान वेदांत विचार करते समय इतने दृढ़ हो जाए, चलते समय विचार में कुछ नहीं विचार चलेगा, पहले तो बैठकर विचार करेंगे, समझ आया विचार होने पर चलते फिरते भी ऐसे, अथवा जो वेदांत विचार नहीं करता भगवान का नाम लेता है, चलते फिरते भगवान को भूले नहीं, ऐसे भगवान के चरण में बैठा हो भगवान का नाम ले, तो नाम लेते खाली हाथ से माला चलते और नाम लेते कि मन कहीं भागता ऐसा नहीं, हाथ से माला चले नहीं चले, मन परमात्मा के चरण में लगे, परमात्मा का चिंतन करे, ऐसे करते करते और लोग में व्यवहार बातचीत करते समय कभी कभी सोता बात करनी पड़ती है, करते ठीक है किन्तु स्वयं भी अपने लक्ष्य को नहीं भूले, ऐसे फालतू बात करते सबसे बह करके बात करके आगे नहीं जा करके भगवान का नाम लेते रहे। ये नहीं कि दूसरे को सुनाने के लिए, कोई कोई से होता अभ्यास हो जाता है बीच में बड़े जोर से कहे हा राम हाँ, बीच में जी बोलने का, दूसरे को सुनाने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, उसको जैसा होता है वो बोलते रहते, जो दूसरे समझे बड़े भक्त है उन्हें अंदर से भावना हो, शब्द नहीं करके भावना करना मुख्य है, और शब्द नहीं करे तो अच्छा, शब्द करे तो कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मुख्य है मन लगना चाहिए, मन नहीं लगा के शब्द से बोला अभ्यास हो जाता है, बहुत शब्द से बोलते मन नहीं होता, मन उसमें परमात्मा लगे रहे, ऐसे व्यवहार करते समय बहुत समय बैठे तो भी अपने चिंतन छोड़े नहीं, अब ऐसे कुछ माला बनाकर देखा करके जब ऐसे करते रहे बैठे वो करते रहते, ये हम जब करते रहते, वो भावना जहां हो जाए दिखाने के लिए बनावटी वो तो रास्ता छट गया, ये भावना नहीं होनी चाहिए। यदि जितना हो सकता है अपने आप चिंतन करते ठीक है, दूसरे को दिखाने की भावना क्या चिंतन है, दूसरे को दिखाने क्या जरूरत है, अपने आप चिंतन करें, इसलिए नियम है माला को छिपा कर रखते हैं, मेरा पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार जप करे भगवान का नाम ले, कोई जरूरी नहीं दिखाना बैठना। ये प्राणायाम करते हैं हम, बताते पाठ में बैठने वाले किसको नींद लगती, तो क्या करना, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के लिए क्या नाक पकड़ना पड़ेगा, जरूरी है? नाक नहीं पकड़ कर सकते, बैठ करके बैठे सांस को रोक दो, किसको पता नहीं चलेगा। नींद लगते हैं तो क्या करना, सांस को रोक दो करो, नहीं तो लंबा सांस ले तो छोड़ो, नहीं तो रोका फिर छोड़ दिया, फिर रोका, रुकते रहे फिर छोड़ दिया, ऐसे आप बैठ कर करते तो पता नहीं चलेगा। तो निद्रा को तमोगुण से निद्रा होती है, उसको रोकने के प्राणायाम करने से निद्रा को जीतते है, मन एकाग्र होता है। इसी प्रकार जपादि करते रहे, किन्तु दूसरे को दिखाना ये भावना नहीं हो, दूसरे को नहीं पता चले ये अच्छा है, अपनी चिंता न करें। तो ये हमेशा ही अपने लक्ष्य को नहीं भूले, ध्यान करते समय इसे करते करते जिस प्रकार व्यवहार करते समय चलते फिरते उसको भूले नहीं। ब्रह्मचारी भिक्षा के लाता है, वो अपने को मानता है मैं समर्ग, जब भिक्षा में गया तो कौन सौनक के नाम है और काव्य कपि गोत्र में है, सौनक है, सुको सुनक है पिता का नाम, इसलिए पुत्र का नाम सौनक हो गया। कपि नाम गोत्र से उत्पन्न हुए और अभिप्रतारिणी नाम है अभिप्रतारिणी, कक्ष सैनी के पुत्र काक्ष सैनी, वो भोजन कर बैठे परिविष्य मानो, उनको वो कोई परिवर्तन वाले भोजन कर रहे, भोजन दे रहे, अभी बैठे भोजन किया नहीं, बैठे भोजन करने के लिए कोई परोसना है। उस समय ब्रह्मचारी विभिक्षे, जो संवर्ग उपासन करे ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने लगा, नारायण हरे ऐसे कह देते हैं। जो सन्यासी के लिए भिक्षा मांगने के लिए है, वो अपने भगवान का नाम उनको सुना देना, सन्यासी का कर्तव्य आकर के भगवान का नाम सुना दो। गृहस्थ का धर्म है, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी आया उसको भिक्षा देना, नारायण हरे संबोधन कर बुला दिया, वो जब नहीं सुन पाए दो बार बोले, सुनने के बाद वो आकर के उनका कर्तव्य भिक्षा देना। कभी कभी उनके पास नहीं तो यदि कहते थोड़ी देर रुके हम ले आते हैं, तो उसको रुकना चाहिए, क्योंकि किसके तार पहुंचे यदि भिक्षा के बिना वापस जाए गृहस्थ की बहुत हानि होती है। यमराज के घर में ब्राह्मण आए थे तो वैश्वानर प्रविशन्ति अतिथि ब्राह्मण ग्रहण, जैसे अग्नि आने पर घर जला देती है, इसी वजह कोई अतिथि ब्राह्मण आए तो वैश्वान अग्नि के समान है, सारे धर्म सब नष्ट कर देते हैं। तस्सीताम शांति कुरवंती हर वैश्व उदकम, ये कहते इसके शांति के लिए जल लेकर के पाद प्रख्यान करो, उसको शांति करो। कोई आए तो कोई सन्यासी महात्मा घर में आए तो भोजन कुछ नहीं कर चला गया तो अनिष्ट होता है, इसलिए कुछ हो तो थोड़ा कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ तो कुछ दे दे, धन रुपया मांगने वाले धन की आवश्यकता नहीं, खाद्य पदार्थ तो कुछ दे दे, धन की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो तो वो भिक्षा मांगा तो कहने के बाद तो ये लोग बैठे देख जानते उपासना कर रहा है और अपने को बड़े उपासना तो थोड़ा वैश्वान उपासना करता है, तिभिक्षे तस्मे वो न दतु, वो भिक्षा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, कहते देखो ये क्या बोल रहा है, ये जानते है भिक्षा करता है उसका ऐसे भाव है, कभी कभी सुना होगा तो सुनते क्या कहता है, देखो तो ये कहता है, सहोवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वैतदन्नं तस्मै तन्न दत्तमिति। सवात महात्मन चतुर, चारि महात्मा को देव एकः कः स जगार, चारि महात्मा को एक देव है जो निगल लेता है, कह प्रजापति कहे प्रजापति उसको ग्रास कर लेता है, चार ही महात्मा को, चार ही महात्मा क्या है, वायु चारी को ग्रास कर लेता है, अग्नि आदित्य चंद्र जल ये चार ही महात्मा है, चार ही महात्मा को ग्रास करने वाला, और यहां भी प्राण है चार ही महात्मा को ग्रास करता है, किसको, चक्षु श्रोत्र मन और वाक, वाक चक्षु, ये चार ही महात्मा को द्वितीय भोजन चतुरो महात्मन एक देव है। कह का दो अर्थ क्या, कह मतलब कौन ऐसा एक देव है जो चार महात्मा को ग्रास कर लेता है, अकह का अर्थ ब्रह्मा है प्रजापति है, सब को ग्रास कर लेता है, जो ग्रास करने वाला है भुवन से गोपा, सारे ब्रह्मांड का रक्षा करने वाले वही है, ब्रह्मांड का पालन करने वाले रक्षा करने वाले, तम हे कापेय मर्त्या ना भी पसंती, मनुष्य उसको नहीं देखते हैं, जो एक महात्मा एक है चारों को ग्रास करने वाले, जो ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले प्रजापति है उसको मरते मनुष्य लोग को नहीं देख पाते हैं, अर्थात वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, अपने को मानता है मैं ही संवर्ग हूँ। ये जो संवर्ग चार ही महात्मा को ग्रास करने वाले अग्नि आदित्य सूर्य जल अथवा वाघ चक्षु सूत्र मन, ऐसे चार ही महात्मा को ग्रास करने वाले जो प्रजापति है उसको ये लोग नहीं देख पाते है। अभिप्रतारिन उनका नाम जानता है, नाम लेकर कहता है हे कापेय हे अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम, वो बहुत प्रकार रहता है, अनेक रूप रहता है ये प्रजापति समष्टि, ये उसको नहीं देख पाते हैं लोग मृत्यु। यस्मेवा एतद अन्नम, जिसके लिए अन्न भोजन पकाए तस्मे एतद न दत्तमिति, उसको प्रजापति है ब्रह्म है उसके लिए अन्न पकाए, उसके लिए तुम पूजा आदि अर्पण करते हो उसको अन्न नहीं दिया, अपने क्या मानता है स्वयं प्रजापति मैं हूँ तुम्हारे द्वार खड़ा हूँ, जिसके लिए तुम भोजन ये मरते लोग पकाते उसको नहीं देख पाते, जिसके लिए अन्न पकाए पूजा करना है के लिए उसको अन्न नहीं दिया, तुम्हारे द्वारे पर प्रजापति आए प्रजापति को अन्न नहीं देते हो, ये संवर्ग उसको नहीं दिया, ऐसे कहने पर उनको कहा तुम नहीं जानते हो करके, फिर उसको सुन करके अभी भोजन तो प्रारंभ नहीं हुआ था तो जा करके फिर उसके पास पहुंच करके फिर उसको कहते हैं, तो ये जो संवर्ग क्या है यहाँ आगे वो लोग जाकर उसको बताएंगे। यहाँ तक हुआ तो इतने उपासना करके इतने तन्मय हो जाता था तो भिक्षा करने जाता है तो अपने को संवर्ग मानता है, तुम हमारे लिए भोजन पकाते हो हमको भोजन नहीं दिया तुमने। ओम आप्यायं तुम अमांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्र मतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।